लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का 8वां अध्याय बुलाहट के बारे में जिक्र करता है। आज हम बुलाहट से संबंधित कार्य के बारे में जिक्र करेंगे। श्रोताओं, संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि युवा किशोरावस्था कार्य की दुनिया में प्रवेश करने की ओर इंगित कराती है। आप अपनी जीविका हेतु कौन सा कार्य करते हैं, यह उनके बीच पूछे जाने वाला या वार्ता की एक मुख्य विषय वस्तु होती है, क्योंकि कार्य उनके जीवन का एक अति मुख्य भाग है। युवा वयस्कों के लिए कार्य की यह अनुभूति अपने में अत्यधिक लोचक है, क्योंकि वे अपने कार्यों और अपनी व्यावसायिकता को लेकर परिवर्तनशील रहते हैं। कार्य के संबंध में वे अपने समय का उपयोग करते हैं और यह उन्हें यह निर्धारित करने हेतु मदद करता है कि वे क्या करते या क्या खरीदने की चाह रखते हैं। यह उनके अवकाश के समय की गुणवत्ता और कार्य की मात्रा भी निर्धारित करता है। यह काम है जो युवा वयस्कों के जीवन को प्रभावित करता और उन्हें एक पहचान प्रदान करता है जहां वे अपने को जानते हैं। इस भांति वे दूसरों के संग मित्रता एक संबंध में प्रवेश करते, क्योंकि कार्य सामान्यतः अकेले में नहीं होता है। युवा नर और नारी अपने कार्यों के संबंध में यही कहते हैं कि यह एक उत्तरदायित्व का निर्वहन है जो जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है। कार्य युवा वयस्कों को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करता है। वहीं उससे भी बढ़कर वे अपने जीवन का अर्थ समझ पाते जो उनके सपनों और जीवन की योजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। यद्यपि बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके कार्य उनके सपनों को पूरा करने में सहायक नहीं भी होते हैं, परंतु यह उन्हें एक ख्वाब को अपने में धारण करते हुए उसे पोषित करने हेतु महत्वपूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप वे इस बात को सीखते हैं कि उन्हें सच्चे हृदय से अपने जीवन को समर्पित करते हुए किस भांति कार्य करना चाहिए, जिससे वे ईश्वरीय योजना को आत्मनिरीक्षण करने के योग्य बन सकें। संत पापा फ्रांसिस युवाओं से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे अपने जीवन को कार्य के बिना जीने की ना सोचें। यह अपने में अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्य हमारे लिए जरूरी है जो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमारे लिए विकास का एक मार्ग बनता है जहां हम मानव विकास को पाते जो हमें व्यक्तिगत परिपूर्णता प्रदान करती है। इस संदर्भ में आर्थिक रूप में गरीबों की सेवा करना हमारे लिए सदैव एक वैकल्पिक समाधान होना चाहिए, जो भी कि हम अपने जीवन को विभिन्न तरह की आवश्यकताओं से भरा हुआ पाते हैं। इस भांति सृष्टि में आश्चर्यजनक चीजों पर चिंतन करते हुए जैसे कि हम संत फ्रांसिस असीसी के व्यक्तिगत जीवन में पाते हैं, ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता कार्यों के अर्थ को एक समृद्धि और संतुलित समझ प्रदान करती है। जिसे हम उदाहरण स्वरूप धन्य चार्ल्स डी फौकुल और उनके अनुयायियों के जीवन में पाते हैं। धर्म सभा कार्य के संदर्भ में इस क्षेत्र पर बल देता है कि युवा अपने जीवन में कार्य या रोजगार के संबंध में अपने को बहिष्कृत और हाशिए में छोड़ दिए जाने सा अनुभव करते हैं, जो बहुत से देशों में युवा बेरोजगारिता स्वरूप अत्यधिक गंभीरता से विकसित हुई है। यह उन्हें दरिद्र बनाने के साथ साथ कार्य की कमी, उनके सपने देखने और आशा में बने रहने की योग्यता पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह उन्हें देश के विकास में अपनी ओर से दिए जाने वाले योगदान से वंचित कर देता है। बहुत से देशों में यह इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में युवाओं को कुछ विभागों में पर्याप्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के संबंध में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। अक्सर युवाओं में नौकरी की असुरक्षा आर्थिक हितों से जुड़ी होती है, जहां वे अपने श्रम का शोषण होता पाते हैं। यह अपने में एक जटिल और संवेदनशील विषय है कि राजनीति इसके बारे में एक पहल करे, विशेष रूप से वर्तमान समय में जब हम तकनीकी विकास को पाते हैं जो उत्पादन की लागत को कम कर देती, जहां हम कार्य के संबंध में मशीनों को लोगों का स्थान लेता हुआ पाते हैं। यह मानव समाज की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार या कार्य केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है। कार्य अपने में मानवीय सम्मान की अभिव्यक्ति है, एक विकास का मार्ग जहां हम सभी अपने को समाज के अंग स्वरूप पाते हैं। यह हमें निरंतर अपने उत्तरदायित्वों और सृजनात्मकता में बढ़ने हेतु प्रेरित करता है, जहां हम अपने को व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत संतोष की भावना से सुरक्षित पाते हैं। इसके साथ ही यह हमारे लिए ईश्वर की ओर से दिया गया एक अवसर है, जहां हम अपनी योग्यताओं का विकास करते हुए उनकी महिमा करते हैं। श्रोताओं, युवाओं के संबंध में हम इस बात को पाते हैं कि उन्हें यह तय करने का मौका हमेशा नहीं मिलता कि वे किस तरह का काम करेंगे या उन्हें अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग किस रूप में करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इच्छाओं, योग्यताओं और चाहतों के अलावे कार्य बाजार की कुछ अपनी ही कटु सच्चाइयां हैं। यह सत्य है कि आप कार्य के बिना जी नहीं सकते, और बहुत बार आपको उन सारी चीजों को अपने में स्वीकार करने की आवश्यकता है जो आपके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन संत पापा युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने सपनों का परित्याग ना करें, आप अपने बुलावे को पूरी तरह से दफन ना होने दें और कभी अपने में हार ना माने। आप अपने जीवन में जिस चीज को पाने की चाह रखते हैं, उसे अपने में सजीव बनाए रखें। श्रोताओं, जब हम अपने में इस बात को पाते हैं कि ईश्वर हमें कुछ चीजों को करने हेतु बुलाते हैं, चाहे वह सेवा के कार्य, बढ़ी संचार माध्यम, इंजीनियरिंग, शिक्षण, कला या कोई भी अन्य कार्य क्यों ना हो, तो हम अपनी शक्तियों को समुचित रूप में संग्रहित करते और त्याग, उदारता और लगनता में अपने को पूर्ण रूपेण देते हैं। हम अपने कार्यों को केवल कार्य पूरा करने के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करते हैं, जो हमारे हृदय की गहराई से निकलती है, जहां हम अपनी ओर से दुनिया को, दूसरों को कुछ देने की चाह रखते हैं। यह हमारे जीवन के कार्य को अर्थपूर्ण बनाता और हम अपने में एक वृहद संतोष का अनुभव करते हैं। हम उपदेशक ग्रंथ में पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह अपने कार्य को आनंद पूर्वक पूरा करे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुने। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। क्रूस विजय महापर्व के बाद कलीसिया दुखी माता मरियम की याद करती है। माता मरियम अपने पुत्र यीशु की मृत्यु से दुख के सागर में डूब गई थी। आज भी वे अपने पीड़ित पुत्र पुत्रियों के लिए दुखी हैं। संत पापा ने 15 सितंबर को एक ट्वीट प्रसिद्ध कर दुखी माता मरियम की याद दिलाई। उन्होंने संदेश में लिखा, दुखी कुंवारी जिनका छेदित हृदय यीशु की मृत्यु से शोकित था, अब क्रूसित गरीबों एवं इस विश्व के प्राणियों की पीड़ा से शोकित है जो मानव शक्ति के द्वारा बेकार कर दिए जाते हैं। संत फ्रांसिस असीसी में भ्रातृत्व कोई अस्पष्ट सिद्धांत नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर का एक ठोस वरदान है। असीसी के संत फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि हम सच्चे भाई नहीं हो सकते यदि हम अपने आप को पिता की संतान के रूप में नहीं पहचानते हैं। संत फ्रांसिस असीसी संत पापा को अब भी प्रेरित करते हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार उनके नाम को चुना। यदि 5 साल पहले सृष्टि के लिए ईश्वर की स्तुति ने लौदातु सी को आत्मा प्रदान की, तो इस बार भ्रातृत्व संत पापा के नए दस्तावेज के आकर्षण का केंद्र है, जिस पर वे 3 अक्टूबर को संत फ्रांसिस की भूमि पर हस्ताक्षर करेंगे। किंतु संत फ्रांसिस के लिए भाई कौन है? इसका एक सटीक एवं प्रकट करने वाला जवाब इस व्यवस्थान के शुरू में है, जहां कोढ़ी व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद जिनसे ख्रिस्त ने उन्हें मिलाया था, क्योंकि लोग उन्हें घृणा की नजर से देखते थे। वे कहते हैं, और जब ईश्वर ने मुझे भाई प्रदान किए, मुझे किसी ने नहीं दिखाया कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु स्वयं सर्वोच्च ईश्वर ने प्रकट किया कि मुझे सुसमाचार के अनुसार जीना है। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ ही फिलीपींस की कलीसिया 16 सितंबर को अपने गिरजाघर को विश्वासियों के लिए खोल देगी, जहां सीमित संख्या में विश्वासी प्रवेश कर पाएंगे। धार्मिक सभाओं में प्रतिबंध पर सरकार द्वारा ढील दिए जाने की घोषणा के साथ निष्कलंक भागवन महागिरजाघर, जिसको मनीला का महागिरजाघर भी कहा जाता है, खोल दिया जाएगा। महागिरजाघर के फेसबुक पेज पर जारी एक संदेश में महागिरजाघर खोले जाने की जानकारी देते हुए कहा गया है, मनीला महागिरजाघर में देश की माता कलीसिया यूखरिस्त समारोह में आपका स्वागत करती है। जब हम अपना द्वार सार्वजनिक रूप से बुधवार 16 सितंबर 2020 को खोलने वाले हैं। सरकार के नियमानुसार देश की राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले गिरजाघर अभी भी आम सामुदायिक तालाबंदी के अंदर आते हैं। अतः इसकी शक्ति से मात्र 10% लोग ख्रिस्त्याग में भाग ले सकेंगे। अतः हर मिस्सा में 80 विश्वासी ही भाग ले सकेंगे। रविवार के दिन विश्वासी प्लाजा रोमा में भी ख्रिस्त्याग में भाग ले सकते हैं, जहां पौत्र परम प्रसाद का वितरण किया जाएगा। महागिरजाघर के अंदर प्रवेश करने के लिए मास्क और चेहरे पर कवच होना अनिवार्य बतलाया गया है। महागिरजाघर में सामूहिक ख्रिस्त्याग समारोह पिछले 5 महीने से ही स्थगित था, जब कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने तालाबंदी की घोषणा की थी। फिलीपींस में सोमवार को कोरोना वायरस से 259 लोगों की मौत हुई। यह कोविड-19 शुरू होने के बाद से एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 4630 हो गई है। सोमवार को 24 घंटे के अंदर 4699 लोग संक्रमित हुए थे। कारितास हेल्लास के निदेशक ने यूरोप में शरणार्थियों के सबसे बड़े शिविर मोरिया के जलने के बाद लेस्बोस की स्थिति की जानकारी दी तथा यूरोपीय देशों में साझा जिम्मेदारी का आह्वान किया। लेस्बोस के ग्रीक द्वीप पर तनाव बहुत अधिक है, जहां पिछले हफ्ते शरणार्थी शिविर में आग लगी थी। लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग कोरोना वायरस एवं सामाजिक संघर्ष से भयभीत और चिंतित हैं। अधिकारी अस्थायी शिविर का निर्माण कर रहे हैं, ताकि बिना छत के रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया जा सके। हालांकि स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वे भीड़भाड़ एवं मोरिया शिविर में अस्थिर स्थिति से डरते हैं, जहां की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। संत पापा फ्रांसिस अप्रैल 2016 में उन लोगों के प्रति अपना सामीप्य प्रकट करने लेस्बोस गए थे। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की थी कि वे आम स्थानांतरण नीति से सहमत हों, जो उनकी रक्षा करे एवं उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान करे। रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा ने अप्रवासियों की याद की और उनके प्रति एकात्मकता व्यक्त करने का आह्वान किया। राहत, विकास और मानवीय एजेंसियों की कार्तिक कलीसिया के वैश्विक संघ के यूनानी कार्यालय कारितास हेलास के निदेशक मारिया अल्वेर्ती ने वैटिकन रेडियो को बतलाया कि मोरिया शिविर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और करीब 12,000 लोग बेघर हो चुके हैं तथा सड़कों के किनारे डेरा डाले हुए हैं। अल्बेर्ती ने कहा कि सैनिकों ने भोजन वितरण की जिम्मेदारी ली है तथा वे स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न तनाव से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जो शहर में अप्रवासियों को नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं, किंतु तनाव स्पष्ट है और मानवीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं कार्रवाई ना करें एवं सरकार सभी राहत प्रयासों का समन्वय कर रही है। अल्बेर्ती ने कहा कि उन्होंने द्वीप में दूसरे शिविर के निकट ही एक नया ढांचा बनाने का निश्चय किया है और इस समय शिविर का निर्माण कर रहे हैं। वे लगभग 1,000 लोगों की मेजबानी करने में सक्षम होने के लिए बुनियादी ढांचे पर काम कर रहे हैं। जाहिर है कि कारितास हेलास की समय सबसे बड़ी चिंता है उन स्थानों में सहायता देना जहाँ इसकी सबसे अधिक जरूरत है, किंतु अल्बेर्ती इस बात से भी सहमत हैं कि इस घटना ने वास्तव में शरणार्थियों और अप्रवासियों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए एक आम यूरोपीय नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अल्बेर्ती ने आशा व्यक्त की है कि कारितास ग्रीस लोगों की मौलिक आवश्यकताओं में उनकी मदद कर पाएगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि दूसरा नया मोरिया न हो। इस अलार्म का यूरोपीय नेताओं की अंतरात्मा की आवाज पर और राजनेताओं की मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वर्तमान प्रणाली काम नहीं कर रही है। उन्होंने कुछ स्थानीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी ध्यान में रखने के लिए कहा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।